श्लोक निकालना प्रभु, श्लोक निकालना। ज जन रंजन यमुन तीर जय राधा माधव कुंज बिहार गोपी जन यशोदानंदन हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और गाइए प्रभु का गीत, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय पद प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभु। कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, चैतन्य महाप्रभु की, श्री रतनदास ठाकुर महाराज की जय। आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं आप सब लोग, इतना गंभीर बैठे हो तो बड़ा चिंता घेर रखा है सबको। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारी। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद किरात हुरांड पुलिंद पुलक सा आभीर कंकर यवन कसाद येने चपप यदुपश्रयत शुद्ध्यं तितस्मै प्रभवीष्ण नमः तपस्विनो दान परावशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासुमंद्रो क्षेमं न विन्दं त्रिविनाय दर्पणं सुभद्रा तस्मै सुभद्रा नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक बार फिर हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः यादव जय माधव केशवाय नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जीवन का सार यही है मंत्र का जाप करें ठीक से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये प्रभु का वचन है भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा हे माता सेवरी नौधा भक्ति में एक भी भक्ति है कि जो गुरु के द्वारा मंत्र मिला है ये जो महामंत्र है इसको दृढ़ संकल्प के द्वारा इसको ठीक से जपना चाहिए हरे कृष्ण 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 Hare 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 Ram Hare Ram Dhrid nischay hona chahiye, sankalp pakka hona chahiye. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Yah Srimad Bhagavatam 12 skand mein hai 335 adhyay hai 18,000 shlokon se utprut hai Sukhdev Goswami Maharaj Parikshit ke samaksh ek badi sundar baat kahi he Parikshit humne anek prakar ke gyan bhakti diya lekin is kaljug mein naam sankirtanam jasya sarva papa pranasanam Sukhdev ji Maharaj kehte hain naam sankirtan ke dwara koi sadhan nahi hai कलयुग के प्राणियों के लिए सबसे सरल सबसे सुंदर उपाय है यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में शांति लाना चाहते हैं आपका जीवन प्रभु की तरफ बढ़े इसी मंत्र का जाप करना है हरे कृष्णा 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Gajendra ne wahi prasang hai pura naam nahi liya dub raha tha na bechara naam nahi liya pura आधे नाम पर ही प्रभु दौड़ करके आ गए उसके पास में हरे कृष्णा हरे 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 राम मंत्र है ये कैसा मंत्र है ये महामंत्र है इसको बड़े बड़े देवता लोग जपते हैं भगवान शिव निरंतर जाप करते हैं कितने जिह्वा से पांच मुख से महादेव पंचमुख ब्रह्मा जी चार मुख से चार जिह्वा से निरंतर प्रभु का नाम लेते रहते हैं महात्मा नारद जी वीणा पर गीत गाते रहते हैं इसीलिए बड़ा सरलता से मिला है बड़ा सहज में प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है इसको दृढ़ संकल्प के द्वारा मन में ऐसा संकल्प करें कि जाप ऐसा करें कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े प्रभु ही आपके पास आ जाए यहाँ पर ऐसा जाप होना चाहिए तो आइए हम लोग भागवत जी पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है कितने लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं हाथ उठाओ सभी लोग पढ़ते हैं बड़ा अच्छा बात ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम आठवां स्कंध अध्याय 3 श्लोक संख्या 26। आप लोग आवृत्ति कीजिएगा। सोहम विश्व सृजम विश्वम विश्वम विश्वविदसम सोहम विश्व सृजम विश्वम विश्वम विश्वविदसम विश्वात्मनमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मिन् परं पदम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्वविदसमं विश्वात्मनमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। माता जी सा वह अहम मैं भौतिक जीवन से छुटकारा चाहने वाला विश्व सृजन इस विश्व का सृजन करने वाले को विश्वम जो स्वयं संपूर्ण विश्व स्वरूप है जो स्वयं बोलिए आप लोग संपूर्ण विश्व स्वरूप है। ये देखिए महर्षि वेदव्यास जी ने इसको लिखा है। महर्षि वेदव्यास जी भगवान के अवतार हैं। इन शब्दों को आवृत्ति करना परम भक्ति है। ये इसको बड़े ध्यान पूर्वक हमें आवृत्ति करना चाहिए जोर से। अविश्वम यद्यपि विश्व से परे विश्व वेदम इस विश्व के ज्ञाता को या इस विश्व के अवयस्य को विश्व आत्मनम विश्व के आत्मा को अजम अजन्मा को ब्रह्मा परम प्रणतस्मिन् मैं सादर नमस्कार करता हूँ। परम दिव्य पदम आश्रय शरण अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड के सृष्टा है जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे है। वे इस जगत में हर वस्तु के परम ज्ञाता हैं, ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, वे अजन्मा हैं और परम पद पर स्थित श्री भगवान हैं, मैं उन उन सादर मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, कभी कभी जब सामान्य व्यक्ति को भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत उपदेश दिया जाता है तो लोग तर्क करते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है ईश्वर, क्या आप हमें उनका दर्शन करा सकते हैं। इस श्लोक में इसका उत्तर मिलता है कि यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि कोई ऐसा भी है जिसने संपूर्ण विश्व की रचना की है, जिसने इस विश्व के लिए अवयव प्रदान किए और स्वयं अवयव बन गया, जो नित्य है किंतु इस विश्व के भीतर नहीं है। केवल इसी बात पर श्री भगवान को सादर नमस्कार किया जा सकता है। भक्तिमय जीवन की यही शुरुआत है, यहाँ से भक्ति चालू होती है। जहाँ भी देखो भगवान को नमस्कार करो, किसी जीव को भी देखो तो नमस्कार करो, क्योंकि हर जीव में तो वही बैठे हैं। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें प्रभु ना बैठे हों, जिसमें वो ना हो। ये जो प्रसंग है, गजेंद्र की संपूर्ण स्तुति है ही है। गजेंद्र के विषय में बहुत दिनों से संतों से आप सब श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये गजेंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान को नमस्कार करने की बड़ी भारी महिमा है, बहुत महिमा है शास्त्र में। हो सके तो सष्टांग करो, सष्टांग नहीं कर सकते हो तो मथा टेक करके करो, यदि वृद्ध हो तभी भी झुक करके करो। भगवान नमस्कार से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार श्री राम जी फटिक शिला पर बैठे थे, बंदर भालू सभी जितने उनके मित्र थे, सेवक थे, समुद्र पर पुल बना रहे थे। हनुमान जी लंका में पहले ही जाकर के और महात्मा विभीषण से मिले, और मिलने के बाद में विभीषण के दर्शन करके उन्होंने कहा कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं। किसी व्यक्ति को संत का दर्शन जब होता है जब उसके ऊपर भगवान की कृपा हो, बिना कृपा के संत का दर्शन सुलभ नहीं है, संभव ही नहीं है। लंका में बैठ करके प्रभु को याद कर रहे थे और हनुमान जी भगवान के मधुर मधुर लीलाओं को समझा करके और भगवान के पास लाए विभीषण जी को, और विभीषण जी ने प्रभु जी को प्रभु को प्रणाम किया, लेट के प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम करके उठे तो भगवान ने रज उठाया, धूल उठाया और उनके माथे में तिलक लगाया और कहा कि आज से तुम लंकेश हो। क्या करने से? प्रणाम करने से। देखो, लंका पर विजय प्राप्त नहीं किया प्रभु ने, अभी पहुंचे भी नहीं है। लंकापति रावण पर उसका अभी शरीर बहुत मजबूत है। दशानन ऐसा था, इतना ताकतवर था कि वो पृथ्वी से ऊंचा बैठ सकता था, पानी पर चल सकता था, हवा में उड़ सकता था, खेल खेल में कैलाश को उठा लेता था अपने भुजाओं के बल से, इतने शक्तिशाली था। लेकिन वही रावण जब जीवन में एक पाप हुआ, कैसा पाप, पर स्त्री का हरण किया उसने, सारी शक्ति नष्ट हो गई। ऐसा रावण, उसकी शक्ति नष्ट होने के बाद प्रभु ने कहा कि आज से तुम लंकेश हो। सभी जितने मित्र थे सुग्रीव इत्यादि बोले कि प्रभु आपने क्या कहा ये बात, रावण तो भी जिंदा है, विजय प्राप्त हम लोगों ने नहीं किया, तो आपने इसको लंकेश बना दिया। और मानो कि रावण की बुद्धि सुधर जाए, रावण अपने गलतियों की याचना करते हुए आपके पाद पद्मों में गिर जाता है, तो फिर उसको क्या देंगे आप। राम जी ने कहा इसको तो मैं लंकेश बना दिया, इसको तो राजा बना दिया, यदि रावण मेरे पास आकर के झुक जाए, अपने गलतियों की क्षमा मांग ले, सीता को आगे करके लौटा दे, तो उसको मैं पूरे अयोध्या का राज दे दूंगा। ये प्रणाम की महिमा है, ऐसे प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। किसी जीव में, किसी जीव से घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में वही बैठा है। सियाराम, सबको वही समझो, सब बैठा है। इसलिए नमस्कार की महिमा कहते हैं, जीवन के जो मोक्ष है यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से चालू होता है। आगे प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं, इन्होंने श्लोक में कहा है परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूं जो इस ब्रह्मांड के सृष्टा है। सृष्टि हम लोगों ने नहीं किया है, ये सृष्टि भगवान की है। सृष्टि में जो भी आप वस्तु देखते हो, दिव्यम आध्यात्मिक जगत की वस्तु, भौमम पृथ्वी की वस्तु, अंतरिक्षम आप जो नहीं देखते हो वो भी वस्तु किसका बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वीतम अच्युत निर्जितम, भगवान ने इसकी स्थापना किया है, भगवान के द्वारा बना है ये। हे प्रभु, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे है, वो आप देखें, विचार करें कि भगवान ने सृष्टि को बनाया, सृष्टि में अनेक प्रकार के जीवों को भी बना लिया, अनेक प्रकार के जीव हैं, 84 लाख, हम यहां की बात कर रहे हैं इस जगत की, 84 लाख प्रकार के जोनी हैं, उस सबको बनाया, और सबको बनाने के बाद सबके हृदय में जाकर के बैठे चुपके से, जो आप हमको दिखते नहीं हो, साथ हैं, क्योंकि हम बहिर्मुख है ना, बाहर की चीजों को देखकर प्रसन्नता होती है। साधना करते करते हमें अंतर्मुखी होनी चाहिए, अंदर ही परमात्मा बैठा है, उसका दर्शन करो। इतने बनाने के बाद परमात्मा इस सृष्टि से बिल्कुल अलग है, गजेंद्र कहते हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, हे प्रभु आप सृष्टि करने के बाद इससे बिल्कुल भिन्न है, अलग है आप, ऐसा परमात्मा है, ऐसा भगवान है ये। वे इस जगत में हर वस्तु के परम ज्ञाता हैं, भगवान इस जगत में जितने वस्तु बना है, जो बनाए हैं प्रभु, जीवों को बनाए हैं, जीवों के अंदर जो भी रोग है, सुख है, शांति है, अशांति है, वो सबको प्रभु को ज्ञान है। आप क्यों उनके पास कहते हो जाकर के, प्रभु हमें ये कर दो, प्रभु हमें ये कर दो। हम भगवान के पास जाते हैं, और जाने के बाद में भगवान के पास में पहुंच करके प्रणाम बाद में करते हैं, और मांगने वाले लिस्ट पहले आगे रख लेते हैं। वो तो ज्ञाता है, वो तो जानता है आपके विषय में, वो तो सुप्रीम डॉक्टर है कि आपके पास कौन सा रोग है। लोग शिकायत करते हैं, प्रभु मन बड़ा चंचल है, ये मन तो आप ही का है, आप जानते हैं इसके विषय में। तो भगवान ने कह दिया, मन यदि तुम्हारा चंचल है, मन संसार में भागता है, विषय में भागता है, वो मन मुझे दे दो, मन मना भाव, मन मुझे दे दो। कहा मन देते हैं हम लोग, धन तो दूर की बात है, मन भी नहीं दे पाते। और जिसने मन दिया उसकी सफलता मिली। अब कहते हैं कि आप सबके विषय में जानते हैं, ब्रह्मांड के परमात्मा है आप। भगवान क्या है? परमात्मा है। हम क्या है? आत्मा है। आत्मा हम अंश हैं प्रभु के। बताओ, इतने सुप्रीम है प्रभु कि सबके विषय में जानते हैं, आपको कुछ अलग से बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल जप करो ठीक से, आप तो केवल चिंतन करो ठीक से, हरे कृष्णा 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 कृष्णा, कहा तो उसे जाता है जो न जानता हो, जो अज्ञानी है उससे कुछ कह सकते हैं आप? जो हमारे विषय में जानता है उसे क्या बताना है? आप तो केवल साधना करो, आप तो केवल तपस्या करो, बस। आपके तपस्या को भी जानता है, आप नहीं करते हो उसको भी जानता है, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जानता है, सब जानते हैं प्रभु। ये बात को गजेंद्र कहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इसको। परमात्मा है, वे अजन्मा भी है, जन्म लेते हुए भी भगवान अजन्मा है। अजन्मा का मतलब जन्म से रहित है। संसार का कोई भी दुख, प्रकृति का जो तीन गुण है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, कोई भी संसार का दुख भगवान को प्रभावित नहीं करता है, उनको अपने तरफ खींचता नहीं है, वो अपने तरफ अजन्मा है प्रभु। परम पद परिस्थित भी है, भगवान का पद बहुत ऊंचा है। जब किसी को यहां लगाते हैं, प्रभुपाद जी के ध्यान से सुनिए, हरि बोल, आंख खोल के सुनो, ध्यान ध्यान का युग नहीं है, ध्यान था सतयुग में, हम कलयुग में ध्यान लगा लेते हैं। कृते यध्यायते विष्णु, सतयुग में ध्यान करते थे लोग, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजा के माध्यम से, कलयुग में नाम के माध्यम से भगवान के पास जा सकते हैं। तो आंख खोल करके सुनिए आप लोग, ठीक से बैठिए। भगवान परम पद पर स्थित भी हैं, भगवान के जैसा पद किसी का भी नहीं है। इस संसार में कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं, जो हड्डी चमड़ी से शरीर बना है, पीप खून से जो अंदर भरा हुआ मलमूत्र से, उस शरीर को कहते हैं हम भगवान हैं। कैसे कहते हैं? 10-20-50 शिष्य पीछे पीछे चले ना, 2-4 मठ बन जाए, मठाधीश बन करके भगवान से अपने को थोड़ी कम मानते हैं सब। ये भगवान का पद है, ये भगवान के पद की जैसा प्रभुपाद जी में लगाते हैं, जय ओम विष्णुपाद, भगवान के पद के जैसा वही व्यक्ति। पीछे हम लोग एक दिन कथा में कह रहे थे कि भगवान के भक्ति के करने करते करते भगवान के जैसा ही उस व्यक्ति को स्वरूप हो जाता है। कैसे? जैसे वैकुंठ में चार भुजा भगवान को भी है और वहां दरवान का भी है जो नौकर है। शंख चक्र गदा पद्म सब में है, जो भक्त है उसमें भी, जो मालिक है उसमें भी है। तो भाई भगवान को कैसे पहचान सकते हैं आप? भगवान कौस्तुभ मणि से पहचाने जाते हैं वहां पर। कब अवस्थाओं कब आती है? खूब बढ़िया साधना होना चाहिए जीवन में। साधक को साधना मजबूत होनी चाहिए, वो अवस्था बहुत ऊंचा है, तब होना चाहिए। आप परम पद पर स्थित हैं, श्री भगवान हैं, आप भगवान हैं, यानी सद ऐश्वर्य पूर्ण भी हैं आप। छह भाग है भगवान में, आप पूर्ण भी हैं। आप कहते हैं मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। ये बात गजेंद्र कहते हैं। अपना थोड़ा सा पीछे मुड़ करके महात्मा गजेंद्र का जीवन आप देखिए, क्या थे वो। परीक्षित महाराज ने जब गजेंद्र का प्रभु ने उद्धार कर लिया तो महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु ये गजेंद्र कौन थे, और जिसने हाथी के पैर को पकड़ा था वो कौन था, वो कौन था गजेंद्र जिसको प्रभु अपने नित्य धाम को छोड़ करके उसका उद्धार करने आए, वो कौन था। सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, प्रभु के कथा के प्रति तुम्हारी रुचि अत्यधिक बढ़ रही है। परीक्षित, वो गजेंद्र जो हाथी के शरीर में है ना, वो पूर्व जन्म में एक राजा था, वो इंद्रदुम नाम था उनका। बड़े जीवन में तपस्या किया था। जीवन में तप भी बहुत आवश्यक है। आप यदि तपस्या नहीं करोगे तो दूसरों को तपस्या कैसे सिखा सकते हो आप। आप 3 बजे नहीं उठोगे, आप चाय पीना नहीं बंद करोगे तो दूसरों को चाय कैसे बंद करा सकते हो। आप तपस्वी करो, आप तपस्या करो, आप तपस्वी बनो और आने वाले अपने संतान को भी तपस्वी बनाओ, ताकि वो भी भगवान के पाद पद्मों में जाए। आने वाले संतान को तप सिखाओ। एक छोटी सी आपको मैं कहानी बताता हूं। एक बार एक बेटा था, उनके पिताजी थे। वो बेटा दिन भर आवागिरी करता था, घूमता रहता था, गांव में शहरों में घूम करके आ जाता था, कुछ काम नहीं करता था। पिताजी बार बार बोलते थे कि बेटा तुम जाओ, कुछ न कुछ काम करो, कुछ न कुछ तुम धन कमाओ। बोला कि पिताजी मेरे से नहीं हो सकता है। पिताजी का एक दिन गुस्सा आया। पिताजी ने कहा कि यदि तुमने आज धन पैसा कमा के नहीं लाओगे तुम्हारा मैं टांग तोड़ दूंगा। बेचारा अपने मम्मी के पास गया। अम्मा तो माँ होती है, माँ ने सुनी, मैया ने गले लगा लिया, बेटा तुम अपने रूम में छुप जाओ, खाना पीना मैं सब दूंगी और शाम को 10 रुपये दे दूंगी तुमको, पिताजी को दिखा देना। माता ने ऐसा ही किया। पिताजी ने पूछा कमाया, बोले कि हाँ 10 रुपया कमा के लाया हूँ। पिताजी ने कहा कुएं में डाल दो इसको, कुएं में डाल दो, और डाल दिया। दूसरे दिन फिर माँ उसकी चली गई, बेचारी नहीं रही, तो अपने बहन के पास जाके कहा कि पिताजी बहुत मारेंगे, मेरे को टांग तोड़ देंगे। बोले कोई बात नहीं, 10 रुपया तुमको मैं शाम को दे दूंगी। 10 रुपया ने बहन ने दे दिया। पिताजी से कहा कि मैं 10 रुपया कमा लिया हूं। पिताजी ने कहा कि कुएं में जाके डाल दो। अब बहन भी नहीं दिया। एक दिन निकल गया, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, पैसा बिल्कुल नहीं मिला। एक सेठ जी ट्रेन से उतरे, सेठ जी के बड़ा भारी बैग उठा करके उनके गाड़ी के पास पहुंचाया। सेठ जी प्रसन्न होकर के उसको 5 रुपया दिए। ऐसा उसके शरीर में भार लगा, कभी काम नहीं किया था, उसको 5 रुपया दिया। और पिताजी के पास कहा कि मैं आज 5 रुपया लाया हूं। बोले कि इसको कुआं में डाल दो। बेटा ने कहा क्यों, बड़ा परिश्रम से कमाया हूं मैं इस पैसे को, बड़ा परिश्रम से कमाया हूं मैं, मेहनत से, मेरे शरीर में दर्द हो गया है, क्यों कुएं में डाल लूं। तो एक नंबर का परिश्रम वाला जो पैसा है ना, वो बड़ा सुख देता है जीव को। बच्चों को तपस्वी बनाओ, तपस्या सिखाओ उनको, तपस्या सीखें। तो यहां पर आप देखिए, गजेंद्र पूर्व जन्म में तपस्या किया था उन्होंने, बड़ा भारी तपस्या किया था। तपस्या करते करते ध्यानस्थ भी हो गए थे, ध्यान नहीं रहा। कभी कभी संतों का श्राप जो है ना, वो आशीर्वाद बन जाता है। संत कभी रुष्ट होकर के आपको अशब्द कह दे, श्राप दे दे, समझो कि हमारा जीवन का काम बनने वाला है। अब अगस्त ऋषि आ रहे थे, उठ के खड़े नहीं हुए, स्वागत नहीं किए। ध्यान रखना, कोई संत, कोई वैष्णव, कोई भगवान का प्रिय जन यदि आपके समक्ष आ रहा है, आप कुछ नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, कम से कम उठ करके उसको खड़े होकर के स्वागत करो। स्वागत करना चाहिए उसे। संत न दृष्टि प्रदान करता है, आंख दे देता है, दृष्टा है ना, वो दृष्टा है परमात्मा। आपको दृष्टि चाहिए, भगवान के साथ जुड़ो, गुरु के साथ जुड़ो, वो आपको दृष्टि प्रदान कर देगा। उस दृष्टि से आप दृष्टा का दर्शन कर सकते हो। हमारी आंखें ठीक नहीं है ना, दृष्टि ठीक नहीं है हमारी। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, चलते चलते उसके पैर में बड़ा चोट आया, खून निकल गया, बड़ा खून बहा। सामने उठ करके देखा तो एक डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब के पास जा करके बोला कि डॉक्टर साहब देखिए, हमारे पैर में बहुत चोट लग गया है, इसका कुछ इलाज करो। डॉक्टर ने कहा लेट जाओ, डॉक्टर तो लेटा देते हैं ना, लेट जाओ। वो लेटा दिया और लेटा करके डॉक्टर ने आंख में दवा डालने लगा। उस व्यक्ति ने कहा कि सरकार आंख में चोट नहीं है, पैर में चोट है। डॉक्टर ने कहा चुपचाप लेटे रहो, आंख ठीक होता तो पैर में चोट क्यों लगता। दृष्टि ठीक नहीं है ना हमारी, चलते हैं कैसे, देखते हैं कहाँ। देखने की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। बैठे हैं वहां पर, खड़े नहीं हुए और महात्मा ने उनको श्राप दे दिया कि तुम हाथी के जैसा बैठे हो, उठ के स्वागत तो करना चाहिए कम से कम। ये बात ध्यान रखना चाहिए। कोई भी संत आता है, कम से कम मुस्कुरा के बात करो, स्माइलिंग होना चाहिए आपके चेहरे में, हंस के बात करना चाहिए। उनके बोलने की देर हुई और हाथी का शरीर मिल गया, राजा के शरीर से हाथी का शरीर मिल गया। अपने हथनियों के साथ बेचारे प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। हथनी थी, दो चार बच्चे थे उनके। एक बार की बात है कि त्रिकुट नाम पर्वत पर अपने हथनी बच्चों के साथ जंगल के घास पात खा रहे थे। बड़ी तेज धूप लगी और तेज धूप से जलाशय में सभी बाल बच्चे कूद गए उसी में। अब जल बड़ा प्रिय है हाथी को, जल विहार करने लगे उसी में। और जल विहार करते करते क्या हुआ कि उसी में देखा कि भाई कौन आदमी, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन जानवर है जो मेरे पानी को गंदा करता है, मेरे घर को हिला रहा है। धीरे धीरे क्रमशः मगरमच्छ आके पैरों को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बरसों तक युद्ध होता रहा, हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ, लेकिन पानी का जानवर था, पानी में उसका बल बढ़ गया। ये पृथ्वी का जानवर था, इसका बल कम हो गया। बच्चे निकल करके भाग गए, एकदम तट पर सब बैठे हैं, पत्नी भी, बच्चे भी। बच्चे पत्नी वो भी चैन लगा के खींचना चाहे, लेकिन वो बल से वो पार नहीं पाए और खींच नहीं सके। हाथी डूबने लगा था, उसको क्या बात याद आई, उसकी तपस्या याद आई जीवन की। संत की बात, संत कभी श्राप भी देता है। भगवान के यदि आप पूजा करते हैं, कृष्ण शरण प्रभाव न जहाती, भगवान के जो आपने जप किया है, साधुओं का संग किया है, कीर्तन किया है, उसका प्रभाव किसी भी जन्म में जाओ, किसी भी योनि में जाओ, उसका प्रभाव बना रहता है, उसका प्रभाव निरंतर बना रहता है। वही प्रभाव था तपस्या का। और जब बिल्कुल अपना बल थक गया, अपना पुरुषार्थ कम हो गया, जब थक गया, देखो दो चीज जीवन में करना चाहिए, पुरुषार्थ और उपकार, परोपकार। क्या कहते हैं, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। उपकार जीवन में जरूर होना चाहिए। उपकार अनेक प्रकार का है, ज्ञान के द्वारा भी उपकार कर सकते हैं आप, वस्त्र के द्वारा भी उपकार कर सकते हैं, भोजन के द्वारा भी उपकार कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है उसको कृष्ण भावना मृत का ज्ञान दीजिए, ऐसा उपकार बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। वही तपस्या उनको ध्यान आया, जीवन में तप करना। भगवान ऋषभ देव भी कहते हैं, अपने सौ पुत्रों को कहते हैं, बैठा करके शिक्षा देते हैं कि बेटा तपो दिव्यम पितृकाजेन सत्वम, बेटा तपस्या करो, बिना तपस्या के भगवान नहीं मिलते कभी भी। जैसे आप सब 3 बजे से तपस्या कर रहे हैं, पहले ठाकुर जी के पास गए, फिर उनका नाम ले रहे हैं, फिर संतों का दर्शन किया अपने, फिर प्रसाद का दर्शन करेंगे, ये तपस्या है सब। तो गजेंद्र ने जब डूबने लगे वही तपस्या उनका काम किया। कैसा काम किया गजेंद्र को, अभी डूबने लगे, डूब रहे थे, आधा नाक बिल्कुल पानी में चला गया था, उनको एकाएक याद आया और कहा कि हे गोविंद, गो कहा, बिंद तो बाद में आया, गो शब्द पर भगवान द्वारकाधीश वहां से शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अपने वाहन से इतने वेग से चले, इतने वेग से चले, फिर भी प्रभु ने कहा कि वो डूब रहा है, वो मेरा भक्त है, डूब न जाए, वो मुझे पुकारा है, उसने मुझे बुलाया है। भगवान अपने वाहन को छोड़ करके और जाके गजेंद्र के पास प्रभु पहुंच गए। ये भगवान की कृपा है, यह हेतु की दया है प्रभु की। गो कहने पर भगवान वहां आ गए, बिंद तो बाद में होगा, ऐसा भगवान की ये कृपा है। भगवान ने गजेंद्र को खींच लिया, भगवान ने गजेंद्र को खींचा तो साथ में मगरमच्छ भी आ गया, छोड़ा ही नहीं, पैर को छोड़ा ही नहीं, भगवान ने उसको मार दिया, काट के छुड़ाया और गजेंद्र को उद्धार कर दिया प्रभु ने। किसी संत ने पूछा कि प्रभु गजेंद्र ने बुलाया था आपको, आपने उसका उद्धार बाद में किया और मगरमच्छ का उद्धार पहले कर दिया आपने, ऐसा क्यों किया आपने? भगवान ने कहा कि देखो, जो मेरा भजता है उसका तो उद्धार करता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति मेरे भक्त को पैर इतने दिनों से पकड़ करके रखा है उसका उद्धार तो पहले ही करना चाहिए, ये भगवान का नियम है। यदि आपकी साधना कमजोर है तो किसी संत के साथ लग जाओ, किसी वैष्णव के साथ लग जाओ, वो निरंतर आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। आज श्री लोचन दास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि भी है, तो ये लोग महान आचार्य हैं, महान संत हैं, इन लोगों ने समाज को एक ऐसा दिशा दिया, एक ऐसा मार्ग दिया कि उसी मार्ग पर चल करके भगवत प्राप्ति हो सकता है। इनके अनेक भजन हैं, उन भजनों में भगवान के जुड़ी हुई, जो भगवान के हृदय को भी छू ले, टच कर जाए, ऐसा इनके जीवन में सब भजन है। श्री लोचन दास ठाकुर जी की जय। त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की। संत तो शरीर बदलता है, वो गए कहीं नहीं, वो कहीं नहीं गए, वो शरीर बदलते हैं। तो ये जो जीवन की तपस्या है, जीवन में जो हम तप कर रहे हैं, अभी आपको हो सकता है उसका फल ना पता चलता हो या ना समझ में आता हो, लेकिन उसका गुण, उसका फल तो है, उसी तपस्या का फल है कि आप कृष्ण बलराम हॉल में बैठे हो। वही तपस्या का फल है कि आप भगवान के मधुर लीला को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हो, मधुर लीला को सुन करके ज्यादा से ज्यादा आप जप करते हो, यही तपस्या का फल है। देखो कलयुग में लोग कहते हैं कि, शुरू में लिखा था ना कि भाई ये भगवान को दिखा सकते हैं आप, भगवान को देखे हैं, भगवान को इस नेत्र से देखना बड़ा कठिन है। नेत्र में प्रेम भिक्षण होना चाहिए, नेत्र दीक्षित होना चाहिए। यदि नेत्र दीक्षित नहीं है तो सन्मुख भगवान आने के बाद भी हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। नेत्र यदि आपके दीक्षित नहीं है किसी संत से, नेत्र में प्रेम भिक्षण नहीं है। अर्जुन को देखिए, अर्जुन भगवान के साथ रहते हैं, साथ रहते थे। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान दिया, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, सभी योगों को भगवान ने बताया। अब बताने के बाद में अर्जुन को जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्या भगवान को देख पाए? नहीं देख पाए। साथ रहने वाले, अब गीता पढ़ी है, अर्जुन नहीं देख पाए, कांप गए, डर गए, अश्रुपात होने लगा, बोले कि हे प्रभु आप ये रूप बंद करो, मैं तो यहां खड़ा होने में भी असमर्थ हूं। तो भगवान ने क्या किया? ददामी। भगवान ने क्या दिया? आंख दिया दिखने के लिए, नेत्र प्रभु ने प्रदान किया। तब अर्जुन ने अनेक श्लोकों से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। आप हम सब भी इस नेत्र को ठीक कर सकते हैं। संतः सदैव हृदय से विलोकयंती ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि संतों के सानिध्य प्राप्त करो, संतों के आश्रित हो जाओ। संत के आश्रित जब हो जाओगे तो तुम्हारी अंदर वाली आंख खोल देगा, ठीक हो जाओगे तुम। आप देखो जब भगवान के पास जाते हो, बाहरी जब बहिर्मुख होते हो, जब बाहरी चीज देखते हो तो कहते हो आज भगवान का सजावट बहुत अच्छा है, हार बहुत अच्छा है, भगवान का दिव्य दर्शन भी बड़ा सुंदर है। लेकिन जब ये दर्शन करके कुछ आप कहना चाहते हो भगवान से, ऐसे मिलना चाहते हो, चाहे 2 सेकेंड का ही हो, जब आंख बंद करते हो तब परमात्मा दिखता है आपको। आंख बंद होता है ना दर्शन करते करते, हे प्रभु जो भी है मन में तो समझ जाते हैं बात को। तो इस तरह से भगवान के लिए तपस्या करना बहुत जरूरी है। आप देखिए भगवान के जो माता पिता बने देवकी वसुदेव, कितने वर्षों तक तपस्या किया जंगल में, और ऐसे नहीं जंगल के सूखे घास पात खा करके तपस्या किया, तब जाकर के पुत्र के रूप में आए भगवान। ऐसे थोड़ी भगवान मिल जाएंगे, अंगुली में माला है, जप कर रहे हैं, मन कुछ और हिसाब लगा रहा है, ऐसे कैसे मिलेंगे? मन का हिसाब भगवान में जोड़ो, भगवान के साथ जुड़िए उस मन को, तब जाकर के ये बात बनेगी। 1 मिनट के लिए भजन गा लेते हैं, थोड़ा सा भक्ति विनोद जी का है, लोचन दास ठाकुर जी का, छोटा सा एक लाइन में गाता हूँ।
परम करुणा पौदुई जने निताई गौरचंद्र, परम करुणा पौदुई जने निताई गौर, परम करुणा पौदुई जने निताई गौर चंद्र। पौदुई जने गौर चंद्र, परम करुणा पहु द्विजने निताई गौर चंद्र, सब अवतार
सार शिरोमणि केवल आनंद, ये भगवान का जो अवतार है वो आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। आनंद माने कृष्ण। जब भागवत सप्ताह में तीसरे चौथे दिन हम लोग जब मनाते हैं ना जन्मतिथि भगवान का, तो उसमें गाते हैं नंद घर आनंद भयो। कोई नहीं कहता कृष्ण भयो, राम भयो, नरसिंह भयो, क्या भयो? आनंद माने कृष्ण है, यानी कृष्ण भयो। तो ये भगवान को जो अवतार है वो सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। अरे भजन करो भैया, भजो भैया। कैसा भजन करना है? सुदृढ़ संकल्प वाला हो करके प्रभु का भजन करना है। ये लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं, विषय छाड़िया शेरा से मजिया मुखे बोल, बोलते रहो बोलते रहो, मुखे बोल विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि। देखो भाई त्रिभुवन नाई ए मन दयाल दाता, पशु पक्षी झूरे पसण बिदरे सुनिया रघुर। पशु पक्षी झूरे पसाण, यानी पत्थर भी महाप्रभु के दर्शन करके पाद पद्मों से अलालनाथ जाएंगे। जगन्नाथपुरी से दूर पड़ता है अलालनाथ, वहां चैतन्य महाप्रभु के जहाँ कीर्तन करते थे वहां पत्थर पिघल गया है वहां पर। हम लोग नहीं पिघलते हैं बताओ, हम लोगों को भी पिघलना चाहिए। हम लोग कैसे पिघलेंगे? जब जप करेंगे और नेत्र से जब पानी आएगा उसको पिघलना बोलते हैं, वो पिघलना है, ऐसे पिघलना चाहिए। पशु पक्षी झूरे पसाण बिदरे सुनिया रघुन गाथा, संसार मजिया रही लपड़िया से पदे नहीं तो आस, आपन करम भूंजाय समन कहे लोचन। लोचनदास जी कहते हैं इसको, बहुत सुंदर बात कहते हैं। तो ये लोचनदास जी के जीवन का तपस्या है, वो कहीं गए नहीं है, वो यहीं पर हैं, यहीं पर सब कुछ हम लोगों को दे करके गए हैं। आज यदि ये लोग नहीं होते, हमारे पूर्वा आचार्य यदि ये सब मार्ग को प्रशस्त नहीं किए होते, नहीं होते, तो हम लोग कहाँ होते? यदि आचार्य लोग नहीं होते, ऐसा सुंदर सुखद ऐसा बढ़िया उत्तम यदि संप्रदाय नहीं होता, मध्य गौड़ीय संप्रदाय नहीं होता, आपको इतना शुद्ध भक्ति कहां से मिलती? इन्हीं आचार्यों की कृपा है, इन लोगों ने पथ भी बनाया और पथिक भी बने, यानी मार्ग भी बनाया और उस मार्ग पर चले भी, ऐसे आचार्य हैं लोग। इनका गुणगान करने से, इनका चिंतन करने से आपका जीवन का जो भवरोग है वो समाप्त तो हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो हम समझते हैं कि समय हो गया है, एक बार मंत्र का उच्चारण करते हैं बढ़िया से, हृदय से बोलना, अंदर से बोलना बिल्कुल। हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम। अच्छा ईमानदारी से बोलना, कितना लोग बढ़िया से बोले? देखो बोल तो दिए हैं जीवा से, मन कहाँ था उसको देखना है, मन ही तो लगाना है प्रभु में। अब जो हरे कृष्ण कहते हैं ना, गजेंद्र ने क्या कहा था? हे गोविंद, इतने में आ गए थे वो। तो आप ऐसा करो कि आ जाए ना यहाँ पर,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama.
अच्छा बोलते समय आंख बंद था कि खुला था आप लोगों का? बंद था ना, तो आंख बंद में छवि किसका आया था? नहीं सही बोलना, सबका नहीं आया हुआ गौर निताई जी का है ना, कृष्ण बलराम जी का है, और श्याम सुंदर जी की भी आया, राधा गोविंद जी का भी आया। संसार में तो नहीं आया कुछ, कहीं जूता रखे हैं बढ़िया वहां चला गया हो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। महाप्रभु जब कीर्तन करते थे ना, कभी कभी उदंड कीर्तन करना, खुद महाप्रभु का शरीर बिल्कुल त्रिभंग हो जाता था, ऐसा महाप्रभु करते थे। ऐसे ही करते रहे आप सब भी, आप सबका बहुत धन्यवाद, सुखी रहे आप सब, स्वस्थ रहे। जय राधे, धन्यवाद।